खोने की रूह मिली है, जिसे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। हम कहते हैं डैडी, वो हमारे लिए बहुत जाती है, उसका वाकई हमारे साथ एक रिश्ता है। आप तमाम डर को निकाल फेंके और जान लें कि आपको इख्तियार मिला है, आपको इख्तियार मिला है। आप खुदा से ताल्लुक रखते हैं और वो आपके लिए सब अच्छा करता है। इससे पहले कि मैं कुछ आपको सिखाऊं, मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगी जिन्हें दिल की बीमारी है और वो लोग जो गुलामी की रूह रखते हैं। तो अगर आपको दिल की बीमारी है तो अपने हाथ को दिल पे रखें। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को दिल की बीमारी से शिफा मिली, जो कि मुझे खुद भी मिली। अपना हाथ दिल पे रखें और कहें, ऐ बाप, मैं आज ईमान रखती हूँ कि खुदा का कलाम मेरे दिल को शिफा देता है। मैं कलाम को दिल में रखती हूँ ताकि शिफा हो और ये आज़ाद हों हर किस्म की तबाही से। यसु के नाम से आमीन। अब आपको शिफा मिल गई है। मैं सुनना पसंद करूँगी कि आप खुद कहेंगे कि मैं शिफा पा गया हूँ या शिफा पा गई हूँ। लेकिन मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगी जो गुलामी की रूह रखते हैं, जो खुद भी परेशान हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं दे सकते, आप सोचते हैं कि आपको माफ़ी नहीं मिल सकती, इसलिए अपना हाथ दिल पर रखें और कहें, ऐ बाप, मैं जैसा भी हूँ तो मुझसे प्यार करता है और आज मैं कबूल करता हूँ वो सब कुछ जो गलत हो रहा है। मैं इल्तजा करता हूँ, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, हकीकी तौर पर माफ़ कर। तेरा शुक्र हो, तूने यसु को भेजा टूटे दिलों को जोड़ने के लिए और मैंने शिफा को पा लिया है। यसु के नाम में आमीन। कॉल करें और कहें कि हमारे लिए दुआ करें, मेरा ईमान है, मुझे आज शिफा मिली। ओह, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपको कुछ नया सिखाऊंगी और आज मैं आपको बताऊंगी क्या खुदा फिक्र करता है, क्या वो करता है। और मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें। और जब हम बुरी चीज़ें देखते हैं तो हम कहते हैं, ओह, क्या खुदा फिक्र करता है। तो सुनिए, क्योंकि हम ये बहुत दफ़ा कहते हैं, हम कहते हैं कि हर चीज़ हमारे खिलाफ काम करती है। पैदाइश 42 बाप और 36 आयत में लिखा है, सिर्फ आप ही ये नहीं कहते, याकूब भी कहता है। याकूब ने अपने बेटों से कहा, तुमने मुझे बेऔलाद कर दिया। यूसुफ नहीं रहा, शमाउन भी नहीं रहा, और अब बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। लेकिन उसने क्या नहीं देखा, उसने क्या नहीं देखा, खुदा के इशारे को नहीं देखा। हमें इन चीज़ों को खुदा की नज़र से देखना चाहिए। वो अपनी नज़र से इन चीज़ों को देख रहा है। आ, अब मैं हर किसी को खोने जा रहा हूँ, सब तबाह हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। खुदा ने यूसुफ से कहा कि यूसुफ, तू मिस्र चला जा अपनी तैयारी के लिए और अपने ख़ानदान के लिए, खस्ता ज़िंदगी से निकलने के लिए। और फिर यूसुफ ने उन सब को बचाया जो गुलामी और खस्ता जिंदगी में थे, और पूरे खानदान ने जी भर के अनाज खाया। और अब मैं सोचती हूँ कि हम खुदा की नज़र से देखें। बहुत बार हम इन चीज़ों को सिर्फ अपनी नज़र से देखते हैं, अपने नज़रिए से। क्या खुदा फिक्र करता है? जी, वो करता है। तो हमें क्या करना है? हमें ईमान रखना है और कहना है कि जो चीज़ हमसे बात करती है वो चीज़ हमारी गलत सोच है। मुझे याद है, हम एक दफ़ा छोटे जहाज़ में थे और सिर्फ चार लोग थे जो जहाज़ में हमारे साथ बिलिंग मॉन्टेना जा रहे थे, और जहाज़ का पायलट मसीही था। और हम वहाँ पर मैथोडिस्ट चर्च में पाकरू पर कलाम देने जा रहे थे, और जब वापस जहाज़ में बैठे थे और जहाज़ रनवे पर चल रहा था, और मैंने देखा कि एक औरत जो बिल्कुल ही मेरे पास बैठी थी, उसने कहा, व्हील पर आग लग रही है। तो मैंने पायलट से कहा, व्हील पर आग लग गई है, ओ आप फिक्र मत करें, ये बस ऐसे ही जल रहा है। मैंने सोचा, ओ ओ, ये क्या हो रहा है। मैं इन चीज़ों की तरफ देख ही रही थी, और जब जहाज़ ऊपर को उड़ा तो उसने कहा, उसने कहा इलेक्ट्रिकल निज़ाम हो चुका है। मैं नहीं जानता कि व्हील वापस उतरने के लिए निकलेंगे या नहीं, मैं उसकी ऊंचाई को नहीं देख सकता, शायद ये जहाज तबाह हो जाए। मैं वापस रेडियो से भी रابطہ नहीं कर सकता, जो कि हिफाजत के लिए ज़रूरी है। फिर उसने कहा कि हमें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ओहो, और फिर मैंने कहा कि मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या आप तैयार हैं? और फिर उसने कुछ कॉट अपनी गोद में रखे और मुंह लटका के बैठ गया। और मैंने उससे उस पायलट से कहा, हम नहीं मरेंगे, खुदा हमें जिस तरह लाया उसी तरह वापस घर पहुंचाएगा, और ये जहाज तबाह नहीं होगा। हमसे कोई पासपोर्ट नहीं मांग रहा, और हर कोई यही कह रहा था। फिर उसने जहाज को वापस मुड़ा और हम बाहिफाजत जमीन पर उतर आए। उसने कोई ऊंचाई नहीं देखी, और आप देखे कि मैं जिंदा हूं। फिर देखें कि तमाम चीजें हमारे खिलाफ थीं, और हमने खुदा की बातें उस वक्त क्यों नहीं की? और वो क्या कहता है, जब खौफनाक चीजें आपके सामने होती हैं तो हम खुदा के कलाम के जरिए उन चीजों पर गालिब आ सकते हैं। जी बिल्कुल, खुदा के कलाम के जरिए। अब मैं एक और चीज बताऊंगी कि खुदा चाहता है कि हम देखें, यीशु हर चीज में मौजूद है। ओह, ये चीजें मेरे खिलाफ हैं, क्या मैं यीशु को देख सकता हूँ? और मैं आपके लिए दुआ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि फितरत हमें बताती है, फितरत ये जाहिर करती है, और चीजें ये कि यीशु है, और यीशु ही तमाम चीजें पैदा करता है। तो मैं कहूंगी ये भी दुआ है। तो मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहूंगी। रोमियो 1:20 में लिखा है, क्योंकि उसकी अनदेखी संतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूबियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक कि उनको कोई उजर बाकी नहीं। और मैं डेनवर में रहती हूँ, और जब मैं पहाड़ों को देखती हूँ तो ये बहुत खूबसूरत नजारा होता है। आप जानते हैं मुझे ये बहुत पसंद है, और ये कुदरत बताती है कि यहाँ खुदा है। और कुछ लोग इन चीजों को नहीं समझते, मेरे ख्याल से उन्हें कुछ नजर नहीं आता कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। और मैं कभी कभार सोचती हूँ कि हम कुदरत पर रुक सकते हैं। बहुत साल पहले हमारे पास एक जोड़ा आया, और वो हर गर्मियाँ पहाड़ों पर जाते थे, लेकिन चर्च नहीं जाते थे और बाइबल नहीं पढ़ते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम पहाड़ों पर जाएंगे और हम पहाड़ों पर खिदमत करेंगे, क्योंकि खुदा ने पहाड़ों पर खिदमत की, और मैंने नहीं की। और मैंने उससे कहा कि जब भी तुम मुसीबत में लड़ो तो पहाड़ों पर जाया करो, और वहां तुम्हारी मदद होगी। उसने कहा, जी ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम इस कुदरत की इबादत नहीं करते। लेकिन कुदरत चिल्लाती है कि दुनिया में बहुत कुछ है, खुदा हकीकत है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो खूबसूरती का खुदा है, ना कि तशद्दुद और गुस्से वाला। वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आइए एक और चीज सीखें, इसके मुतल्लिक क्या है कि कुछ और चीजें जो हम करते हैं और उनके मुतल्लिक सोचते हैं। अच्छा, तो माजी में मेरे साथ क्या होता रहा? जी मुझे पता है कि हर शख्स की अपनी फहरिस्त है। मेरे पास कुछ लोगों की फहरिस्त थी, मैं इनके मुतल्लिक सोच नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। फिर मैंने अपनी जिंदगी में 1 साल तक सोचा, और फिर मैं वापस जा सकी और ऐसा कर सकी। आप भी शायद वापस जा सकते थे कि मेरी शादी अच्छी तरह होती, मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, या मेरे शोहर ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे शायद हकदार थे, या मेरे वालदैन ने मुझे इतना गिरा दिया कि मुझे गालियां भी पड़ती हैं। ऐसा कुछ आप सोच सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीजें माजी में हो जाएं वो बहुत बदसूरत बेमायनी होती हैं। फिलिपियों 3:13, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ। वाओ, आप क्या करते हैं कि माजी की चीजों के मुतल्लिक सोचते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते? खुदा ने आपके लिए आगे बहुत सारी चीजें रखी हैं। मुकाशवा 21:5, और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। आप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ माजी को जानता हूँ, और कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं उम्र रसीदा हूँ। फिर मैंने अय्यूब में पढ़ा, ओ अय्यूब 42:12, इसमें लिखा है, यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी। और ये हकीकत है, ऐसा ही हुआ। तो क्या आपको यही लगता है कि आप जिस्मानी और जहनी तौर पर बीमार हो जाएंगे, आप अपनी याददाश्त खो देंगे? ऐसा मत सोचें, ऐसा सोचना बंद कर दें। खुदा के पास आपके लिए अच्छी चीजें हैं। और इम्साल 4:18 में लिखा है, लेकिन साधकों की राह नूर शहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। और मैं ये हवाला उन लोगों को देती हूँ जो आज 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इम्साल 4:18 आयत। आपका राह मदम नहीं हो रहा, ये रोशन हो रहा है। हर दिन खुदा आपके लिए मोजजात करता है, वो रोजाना काम करता है उनके जिंदगी में जो ईमानदार हैं और उम्मीदों के साथ जी रहे हैं। माजी की चीजों के मुतल्लिक क्या है? बाइबल कहती है कि उन्हें भूल जाओ। तो अब अपने हाथ को दिल पे रखें और मेरे साथ कहें, ऐ बाप, मैंने माजी की चीजों को भुला दिया है, मैं इन्हें तेरे खून में छुपाता हूँ और मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ। तू इन्हें छुपा और मेरी जिंदगी से इन्हें दूर कर दे और अब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए बहुत कुछ रखा है और मेरी बाकी की जिंदगी में, और अब मेरी जिंदगी में मुझे इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वाओ वाओ, आपने बेहतर महसूस किया, क्या ये अच्छा है? आप मुझे कॉल करें, मैं चाहती हूँ, और बताएं कि आज की दुआ कैसी थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है। मैं आपको एक और हवाला बताती हूँ जो कि मेरा बहुत पसंदीदा हवाला है, करंथियों 5:17 आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है, ओ ओ ओ, क्या आप मसीह में हैं, तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। हर रोज मैं उठती हूँ तो कहती हूँ, गुड मॉर्निंग खुदावन, गुड मॉर्निंग यीशु, गुड मॉर्निंग पाकरू। ऐसी है आपकी प्यारी मैरीलीन। आपको भी ऐसा करना चाहिए, आपको हर रोज ऐसा करना चाहिए। मैं हर दिन बहुत खुश होती हूँ और हर दिन खुशी मनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ? मैं आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ती हूँ और खुदा से कहती हूँ कि मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर आपको कुछ नया सिखाऊंगी, हमारे साथ रहिएगा।
तारीख में पहली दफ़ा हमें ग्रुप ट्रिप माँ मिली जो आपको हमारे साथ इथोपिया लेकर आई, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी पुरजोश हूँ। आप देख सकते हैं कि इथोपिया में कितने हैरान कुन मौजज़ात हो रहे हैं, खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है, लोगों को शिफा मिल रही है। माँ हमें बताएं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है।
और जब हम अक्सम में गए, अक्सम में लोगों ने बताया कि उनके पास फलदार दरख्तों के बाग हैं। मेरा मतलब, इथोपिया का जिक्र कलाम मुकद्दस में बहुत दफा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। और हम फिर लाली बेला में गए जहाँ वो चर्च दरियाफ्त हुआ जो दुनिया के 7 हैरत अंगेज चीजों में से एक है, और लाली बेला में बहुत सारे मौजजात हुए और आप इसे पसंद करेंगे और खुदा चाहता है कि आप वहाँ जाएं, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों को बढ़ाएं और हमारी मदद करें इस खूबसूरत दुनिया में इनकलाब लाने के लिए। आप हमारा साथ दें, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। हम देखते हैं अच्छी और बुरी चीजों को, खुदा सब कुछ कर सकता है। अच्छाई के लिए इकट्ठे काम करना, क्या वो कर सकता है? बाइबल कहती है वो कर सकता है, लेकिन उन चीजों के मुतल्लिक क्या जो रोजमर्रा जिंदगी में होती हैं? क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं कि मेरा कपड़ों का बैग खो गया था किसी एयरपोर्ट पर। उस दिन मैं शिकागो से वापस अपने घर आ रही थी। क्या खुदा इन चीजों को वापस दे सकता है? ये अहमकाना सोच है और ये अहमकाना चीजें हैं। क्या मुझे परेशान होना चाहिए था कि ओ मेरे बैग में बहुत कीमती सामान था वगैरह वगैरह, और मेरे बैग में बाइबल थी और यादगार चीजें थी वगैरह वगैरह? ये चीजें अहमकाना है। तो अब मैं आपको कुछ और हवाला बताऊंगी। जो कि मुझे बेहद पसंद है। पहला ग्रंथियों 1:27-28 आयत, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हाकिमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। क्या पैगाम है! वाओ, खुदा ने बेवकूफों को चुन लिया, अहमकों को, कमजोरों को, और वो कहता है कि अकलमंदों को परेशान करने के लिए बेवकूफों का इस्तेमाल करता है। तो मेरा ईमान है, जब मेरा कपड़ों का बैग खो गया तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई, मैंने बिल्कुल भी फिक्र नहीं की। मैंने कहा, शुक्र है मेरे चर्च में बाइबल पढ़ी है, शुक्र है मैं कल आराम से बाइबल पढ़ सकती हूँ, और फिर मैं शुक्रगुजारी कर रही थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कुछ साल पहले एक वाकया हुआ था। तब एक अहमक औरत थी, लेकिन तब खुदा ने एक मोजज़ा किया। हमारे शहर में एक औरत थी जो कि पागल थी, और उसने अजीब सा तमाशा हमारे चर्च के बाहर आकर लगा दिया। और एक दिन उसने दुकान से काफी सामान लिया, कुछ खाने का था और कुछ डब्बे थे, और चर्च की खिड़कियों पर फेंकने लगी। और हमने उसे ढूंढा कि वो कौन है, और हमने देखा कि वो कौन है। और फिर वो एक दिन चर्च के ग्राउंड में आई और फजूल चीजें, कूड़ा करकट चर्च से उठा उठा कर बाहर फेंक रही थी। पागल थी, अहमक थी। और फिर एक दिन मेरा शोहर और मेरे बच्चे घर से बाहर थे, असल में वो सैर के लिए गए थे। मैं घर पे थी, मैं केक बना रही थी और दूसरी मंजिल पर अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने कहा, माँ रुको, मुझे नीचे जाना है और केक को देखना है। फिर मैं नीचे आई, जब मैं सीढ़ियों में ही थी, हमारे पास एक छोटा सा तालाब था। ये तालाब हमारे ख़ानदान के लिए था, जहाँ हम नहाया करते थे, और वो तालाब में करा रही थी और कह रही थी ऊ, और मैंने सोचा कि हमारे बाथरूम में कोई है जो चिल्ला रहा है, और मैंने माँ से कहा, ठहरिए, घर में कोई है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक टॉर्च पकड़ी, जो मुझसे हो सका मैं अगले दरवाजे से बाहर निकल गई, और सांसें फूली हुई थी। उसने हमसायों का दरवाजा खटखटाया, और फिर क्या, मेरे घर में कोई है। वो भागकर अंदर गया, उसके पास बेसबॉल का बल्ला था। वो औरत जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी की तरफ भागी। ये वही औरत थी, और ये वही वाकया अहमक औरत का था। लेकिन हम उसके साथ क्या करते, कोई तो क्या, उसका अपना शोहर भी उसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था। वो कहता है, ये जैसी है ऐसी ही रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। फिर मैंने उसके शोहर को बुलाया और कहा कि सुनो, तुम्हें नहीं पता इसने चर्च में और हमारे घर में तोड़फोड़ की। मैं चाहती हूँ कि तुम उन तमाम चीजों की रकम मेरे घर के दरवाजे पर ला के रखो, और तुम्हें अब ऐसा करना पड़ेगा। और उसने मुझसे कहा, मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और जी, उसने मुझसे कहा, मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और उसने अपनी बीवी को साथ लिया, जो कि पागल थी, और एक रूहानी मशवराती टीम के पास ले गया, और वो आज़ाद हो गई। जी, वो आज़ाद हो गई, मेरा मतलब अब वो खुदा की खिदमत करती है। ये जो एक पागल, बिल्कुल अहमक औरत थी, खुदा ने उसे चुना और उसके अंदर हिकमत दानाई पैदा की। और वो वाकई नामुमकिनात का खुदा है, और वो सच्चा खुदा है। वो अहमकों को चुनता है और उनको दानाई देता है, और वो तब्दील करता है। और बहुत से लोग मुझे ऐसे कहते हैं, तुम नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन खुदा अहमक औरतों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि वो उनमें अक्ल और दानाई भेजे। और हकीकत में ऐसा होता है। क्या आपके ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई हो? मैं बहुत पसंद करती हूँ जब आप हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा अहमकों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, हत्ता कि मुझे भी और मेरे लोगों को भी। इसलिए खुदा अच्छे लोगों को भी और बुरे लोगों को भी इस्तेमाल करता है। और अब मैं एक और हवाला पढ़ूंगी, और आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हों। रोमियो 8:28। खुदा तमाम बुरी चीजों के जरिए अच्छे काम करवा सकता है। और एक बड़ी मिसाल मुझे याद आ गई जो मैंने चाइना में देखी। बहुत से लोग 1987 में जब हम वहां गए, हमने वहां बहुत सारी बाइबल्स तकसीम की। वहां बहुत परेशानियां थी, बहुत हालात खराब थे, खौफनाक मंजर था, और हमने वहां लोगों के लिए बर्गर भी तकसीम किए। और अगर आप सोचें तो 70 मिलियन लोगों की तादाद लगती थी जिन्हें हमने बर्गर्स और बाइबल तकसीम की। और ये अच्छा था, हम मुकद्दस रूहें हैं। हम वहां जब बाइबल्स तकसीम कर रहे थे और वहाँ बेसमेंट में एक चर्च था जहाँ बहुत सारे मुजज़ात होते थे। और मुझे याद है जब मैं उस चर्च के अंदर गई तो मैं एक आदमी से मिली, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ 10 लाख से भी ज़ायद लोग मौजूद थे। ये चर्च था जहाँ इनकलाब भर रहा था, फैल रहा था इनकलाब। और अब मैं चाइना में गई और दुनियावी मैगजीनों में एक मैगजीन पर लिखा था कि अब चाइना में परेशानियां नहीं बल्कि मसीही हैं। जिस बेसमेंट पर हमेशा परेशानियां रहती थी, अब खुदा ने उस जमीन के नीचे भी इनकलाब बरपा कर दिया है। और अब इस इनकलाब ने चाइना को मशहूर कर दिया है। और अब मैं हर किसी से सुनती हूँ कि चाइना में सबसे ज्यादा मसीही हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान कुन जगह थी, लेकिन अब खुदा की तरफ से यहाँ पर बेदारी आई है। खुदा का शुक्र हो। अब इस इनकलाब ने चाइना को मशहूर कर दिया है और अब मैं हर किसी से सुनती हूँ कि चाइना में सबसे ज्यादा मसीही हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा बेदारी कहाँ आई? ये दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा इनकलाब था। और खुदा बुरी चीजों को चुनकर उनसे अच्छे काम करवाता है। और सोचें, अगर हम इन चीजों को समझें जो बिल्कुल हमारी जिंदगियों को बदलती हैं। सोचें, ये चीजें बहुत खौफनाक लगती हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप जानते हैं आपकी जिंदगी के हालात बहुत खराब हो जाते हैं, लेकिन खुदा बुरी चीजों को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं, मेरा शौहर मर गया और उसके फौत होने से पहले हम एक जश्न मना रहे थे। बहुत सारे लोग आए हुए थे और वहां मेरे शौहर ने एक पैगाम दिया जो कि उसकी मौत से 3 साल पहले का पैगाम था। ये महफूज किया गया था। और उस रात मैंने दोबारा यीशु के लिए जश्न मनाया और वहां सिर्फ 30 लोग थे जो निजात पाने के लिए खड़े थे। लोग कहते हैं, ओ ये बहुत तकलीफ मदद करता है। मैं शादीशुदा थी तकरीबन 60 साल से, लेकिन खुदा ने मेरी मदद की और खुदा ने लोगों को शिफा दी। क्यों? क्योंकि वो बुरी चीजों से भी अच्छे काम करवाता है। और कभी कभार मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोग भी होते हैं, वो दूसरों की मदद करने की कोशिश नहीं करते, वो बहुत खुदगर्ज लोग होते हैं। और खुदा कहता है कि जाओ और दूसरों की मदद करो और कहो कि मैंने अच्छा काम किया है। आप ये जानते हैं, रोमियो 8:31, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? और आप इन चीजों से खुद बात करते हैं और कभी कभार आपको ये हौसला देती हैं। आप इन्हें लिख लेते हैं, आप इन्हें बीमारी कहते हैं और नाकाबले माफ कहते हैं। शायद आप में से कोई बेवा है जो चाहती है कि कोई आपके लिए दुआ करे, आपकी मदद करे, फोन उठाए और जाने कि खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है जो अभी तक नहीं हुआ। वो आपके लिए अपना जलाल जाहिर कर सकता है। और जिन चीजों के अंदर आप हैं, खुदा अच्छी और बुरी चीजों को बखूबी देख सकता है और इन्हें अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
तारीख में पहली दफ़ा हमें ग्रुप ट्रिप माँ मिली जो आपको हमारे साथ इथोपिया लेकर आई। और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी पुरजोश हूँ। आप देख सकते हैं कि इथोपिया में कितने हैरान कुन मौजज़ात हो रहे हैं। खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है, लोगों को शिफा मिल रही है। माँ हमें बताएं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है।
और जब हम अक्सम में गए, अक्सम में लोगों ने बताया कि उनके पास फलदार दरख्तों के बाग हैं। मेरा मतलब, इथोपिया का जिक्र कलाम मुकद्दस में बहुत दफा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। और हम फिर लाली बेला में गए जहाँ वो चर्च दरियाफ्त हुआ जो दुनिया के 7 हैरत अंगेज चीजों में से एक है। और लाली बेला में बहुत सारे मौजजात हुए और आप इसे पसंद करेंगे। और खुदा चाहता है कि आप वहां जाएं, और मैं चाहती हूं कि आप अपने हाथों को बढ़ाएं और हमारी मदद करें इस खूबसूरत दुनिया में इनकलाब लाने के लिए। आप हमारा साथ दें। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। ये आपकी माली जरूरियात के मुताबिक आपके दिल को हौसला देगा। आपको पता है कलाम क्या कहता है, अगर तुम मेरे घर में आओगे तो मैं तुम्हारी रूह को तस्कीन दूंगा और तुम तरक्की करोगे, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को तरक्की देता है। हम यीशु से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो हमसे अहद करता है उसकी बातें हमेशा सच होती हैं। मैं आज आपकी माली ज़रूरियात के लिए दुआ करूंगी, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। तो क्या वो चाहेगा कि हम गरीब हों? नहीं, वो नहीं चाहता। वो हमसे प्यार करता है और वो अपने लोगों को तरक्की देता है, और बहुत तरक्की देता है। और क्या आप जानते हैं हम तरक्की क्यों पाते हैं? ज़हनी तौर पर और जज्बाती तौर पर, क्योंकि हम वफादार होते हैं। जी हाँ, हम फरमाबरदार होते हैं। मैं खुदा के कलाम को मानती हूँ और मेरा ईमान है कि खुदा आपको भी कहता है कि मेरे हुक्म की तामील करो, और खुदा आपको परेशानियों से आज़ाद करने वाला है, आज़ाद करने वाला है बिल्कुल, और आपको खुशी देने वाला है। मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। आए हम दुआ करें। ऐ बाप, मैं शुक्र करती हूं जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं जिन्हें माली मौजज़ात की ज़रूरत है। मैं शुक्र करती हूं जो लोग तुझसे मोहब्बत करते हैं और तू उन्हें तरक्की देता है, इन्हें आगे बढ़ाता है। तू यीशु के नाम में जो सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं और तरक्की फरमाबरदारी कर रहे हैं, माली ज़रूरियात इनकी पूरी हो रही हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं इन मौजज़ात के लिए जो तू हमारी ज़िंदगियों में कर रहा है। मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा आपसे बात करने जा रहा है। आप सुनने वाले हैं और आप इसकी पैरवी करने वाले हैं, और खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करने वाला है।